आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश आज के संक्षिप्त समाचार ऋषाली जैन के साथ। कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया मंगलवार यानी 25 मार्च को आने वाले फेडरल बजट से पहले पैसिफिक क्षेत्र में निवेश जारी रखेगा। उन्होंने SBS न्यूज से कहा कि इस साल पैसिफिक यानी प्रशांत देशों को दी जाने वाली मदद में कोई बड़ा इजाफा नहीं होगा, लेकिन अल्बनीजी सरकार इस क्षेत्र से अपने संबंध बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, भले ही ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की विदेश मदद बंद कर दी हो। डॉक्टर चामर्स ने यह भी कहा कि इस बजट में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच टैक्स यानी टैरिफ को लेकर बने अस्थिर रिश्तों पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा बजट मुख्य रूप से महंगाई से राहत देने के लिए है, लेकिन साथ ही ये भविष्य में निवेश करने, चीजें बनाने और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी केंद्रित है। वहीं चुनाव प्रचार के तहत गठबंधन ने यानी विपक्ष ने सिडनी के पश्चिमी इलाके में स्थित मानसिक स्वास्थ्य सेवा हेडस्पेस के लिए $50 लाख की अतिरिक्त फंडिंग का ऐलान किया है। विपक्ष नेता पीटर डटन ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाना चाहती है, क्योंकि महंगाई की वजह से इन लोगों को इन सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में तकलीफ है। उन्होंने कहा कि इस फंडिंग के साथ सिडनी के पश्चिमी उपनगर पैरामाटा में 1,800 और लोग हेडस्पेस की मदद ले सकेंगे। नेशनल स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के अनुसार साल 2020 से 2022 के बीच 16 से 24 साल के 26% युवाओं ने गंभीर मानसिक तनाव का अनुभव किया था। वहीं दूसरी ओर गठबंधन ने घोषणा की है कि अगर वे फेडरल चुनाव जीतते हैं तो वे 36,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करेंगे ताकि खर्च को कम किया जा सके। विपक्ष की वित्त प्रवक्ता जेन ह्यूम ने कहा कि ये छंटनी सीधे सेवाएं देने वाले कर्मचारियों यानी फ्रंटलाइन स्टाफ से नहीं की जाएगी, लेकिन यह नहीं बताया कि किन विभागों पर असर पड़ेगा। गठबंधन ने लेबर पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वे कंसल्टेंट्स पर खर्चा घटा रही है, लेकिन पब्लिक सर्विस स्टाफ की संख्या बढ़ा रही है। वहीं लेबर ने घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा का बचाव किया है और कहा है कि इससे लोगों को करीब $5,000 की बचत होती है। गठबंधन पहले ही साफ कर चुका है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो घर से काम करने की नीति पर रोक लगा दी जाएगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य मदद रुकने के कारण अब ऑस्ट्रेलिया की सैन्य सहायता पोलैंड के एक लॉजिस्टिक हब में फंस गई है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाई तो उस लॉजिस्टिक हब पर भी काम रोक दिया गया था। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया के एब्राम्स टैंकों की एक टुकड़ी को यूक्रेनी सेना तक पहुंचने में देरी और दिक्कतें दोनों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वेटरन्स मामलों के मंत्री मैट कियो का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया इस स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ है और टैंकों की डिलीवरी के लिए समन्वय पर काम हो रहा है। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में सेना ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कई अभियानों में विभिन्न जिलों से 32 हथियार, कई अत्याधुनिक उपकरण, ग्रेनेड सहित गोला बारूद का बड़ा जखीरा और युद्ध संबंधी सामान बरामद किया है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि ये सेना असम राइफल्स के साथ मणिपुर पुलिस, CRPF, BSF और ITBP के जवानों ने पिछले कुछ दिनों में मणिपुर के 8 जिलों में यह अभियान चलाया। ये जिले पहाड़ी और घाटी क्षेत्र में आते हैं। रक्षा विज्ञप्ति में कहा गया कि सुरक्षा बलों द्वारा किए गए ये समन्वित प्रयास मणिपुर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस बीच रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि असम राइफल्स राष्ट्रीय एकता यात्रा NIT का हिस्सा बनने वाली मणिपुर की 34 महिलाओं ने कोलकाता में पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी से बातचीत की। इस बातचीत ने इन महिला राजदूतों को NIT के बारे में अपने अनुभव साझा करने और पूर्वोत्तर भारत के 7 बहन राज्यों में शांति बहाली के लिए असम राइफल्स और भारतीय सेना की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी हासिल करने का अवसर दिया। इसी के साथ 23 मार्च 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वैशाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।